ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में 4,453 करोड़ रुपए की लागत से रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए भी एक नई लाइन निर्माण की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,245 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कोष की अवधि 5 साल तक बढ़ाए जाने की योजना है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से परामर्श के बाद 11 नवंबर से न्यायमूर्ति खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जस्टिस खन्ना अभी उच्चतम न्यायालय में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति खन्ना ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं और कई संवैधानिक पीठ में शामिल रहे। उनके सुनाए फैसले व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र में मजबूती, मजबूत भागीदारी और निजी स्वायत्तता की प्रधानता रेखांकित करते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों में उच्चतम न्यायालय वास्तविक रूप में लोक न्यायालय के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अनूठा यथार्थ जहां उच्चतम न्यायालय जन अदालत के रूप में कार्य करती है दुनिया में कहीं और नहीं है। उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न विषयों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। इसमें आकाशवाणी में प्रस्तुतकर्ता के रूप में उनकी यादें भी शामिल थीं। साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त फ्रिक्वेंसियों पर प्रसारित किया जाएगा। यह हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR, वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 8 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अंतर सरकारी परामर्श IGC की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। आज सुबह उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज आज 7वें अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज एम्स रायपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति NIT रायपुर के 14वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन श्री धनखड़ कर्नाटक के मांड्या के बीजी नगरा में आदि चुनचनगिरी विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। वे राजभवन भी जाएंगे। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। मतदान 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होना है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा के 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब तक 153 उम्मीदवारों के 164 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। मतदान एक ही चरण में 20 नवंबर को होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना 23 नवंबर को होगी। मौसम विभाग ने कहा कि भीषण चक्रवाती तूफान दाना के सतह पर पहुंचने की प्रक्रिया भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच ओडिशा तट पर मध्यरात्रि बाद शुरू हुई। तूफान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुबह तक जारी रहेगा। भुवनेश्वर स्थित मौसम कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि तूफान के बाह्य बादल प्रवेश के साथ ही सतह पर पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चक्रवाती तूफान के भूमि पर पहुंचने पर हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने मीडिया को बताया कि तूफान के संभवतः उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और सुबह से पहले उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने तूफानी लहरें उठने की भी चेतावनी दी है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को दाना से होने वाले नुकसान का सामना करने और निपटने के लिए केंद्र की ओर से ओडिशा को पूरी सहायता देने का आश्वासन किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।